ओम शांति। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस उद्घाटन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपके स्वागत में मैं कहूंगी, गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारें हैं और इस डायमंड हॉल की शोभा में चार चांद लग गए हैं जो आप सब यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं आज के कार्यक्रम के सम्माननीय वक्ताओं को हृदय से मंच पर निमंत्रण देती हूँ। आदरणीय निर्वैर भाई जी, आदरणीय चक्रधारी बहन जी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जयपुर से पधारी हुई श्रीमती अनीता बधेल जी, डॉक्टर प्रेरणा शेखावत जी, बहन सुमित्रा बाल्मीक जी जो जबलपुर से पधारे हैं, पूनम बहन जी और हमारी परम आदरणीय दादियां भी हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के सम्मेलन का विषय है परमात्म शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन में नारी की भूमिका। अजमेर से उप महापौर जी भी हमारे मध्य पधारे हैं, आप भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन हमारे माननीय वक्ताओं का गुलदस्ते एवं बैचेस लगा करके स्वागत अभिनंदन करें और आप सभी भी उसमें करतल ध्वनि से अपना सहयोग देते रहेंगे। गुलदस्ते एवं बैचेस वर्तमान विश्व में यदि हम आज का परिदृश्य देखते हैं तो हम तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। भौतिक प्रगति में हम देखते हैं कि आज विज्ञान ने हमें चमत्कारिक उपलब्धियां दी हैं और हर 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। हम पाते हैं कि पिछले 50 वर्षों में संसार में जो परिवर्तन आए हैं वो शायद पिछले 500,000 साल में भी नहीं आए होंगे। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि मूल्यों में भी बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें कि आज हम मूल्यों के लिए अधोपतन की दिशा में चले गए हैं और इसके कारण चिंता, भय, असुरक्षा का वातावरण समाज में है। श्रीमती अनीता बधेल जी, आप राजस्थान के राज्य मंत्री हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक जी जबलपुर से पधारे हैं। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, प्रेरणा शेखावत जी, आप सिरोही जिले के एएसपी हैं। निर्वैर भाई जी, पूनम बहन जी, और अभी इसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मधुर वाणी ग्रुप के हमारे सतीश भाई और उनके साथी एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। आप आए शांतिवन में, कण कण में नर्तन, हर मन है मगन, सादर अभिनंदन। और आपकी टीम के साथी हैं सतीश भाई, रमेश भाई, जयराज भाई, धर्मिष्ठा बहन, मनु बहन। आप स्वयं ही गीत रचते भी हैं, गीत की धुन भी बनाते हैं और गीत गाते भी हैं। हमारे सतीश भाई और उनके साथी आप कलाकार हैं और यहाँ पर कला एवं संस्कृति प्रभाग के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं।
विश्व परिवर्तन, नारी की है अहम भूमिका, पवन में है गुंजन, आए शांति वन, कण कण में नर्तन, हर मन है मगन, सादर अभिनंदन। आप अपने लिए तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले
शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन, नारी की है अहम भूमिका, पवन में है गुंजन,
परमात्म शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन, नारी की है अहम भूमिका, पवन में है गुंजन।
शांतिवन कण कण में नर्तन, हर मन है मगन, सादर अभिनंदन। नजर पड़ी जिनसे जगाया कल्प किया
परिवर्तन का दौर है, नीच परिवर्तन करना होगा, संस्कार परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होगा, वृत्ति से कृति बदलें, दृष्टि से सृष्टि बदलें, ऐसे सुंदर भाव रखते हुए मधुरवाणी ग्रुप से हमने ये सुंदर गीत सुना।
जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी, जन जन का
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रथम उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी को। आप जयपुर से पधारे हैं, जयपुर के राजा पार्क सब जोन के लगभग 80 सेवा केंद्रों चक्रधारी दीदी जी हमारी नृत्य करने वाली बहनों का झंडा हिलाकर सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया सभी ने, एक बार कतल ध्वनि से फिर से सभी का अभिनंदन करेंगे। आप देख रहे हैं आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में बहुत कुशलता और योग्यता से कार्य कर रही हैं, ये भी हमारी इन कुमारियों ने प्रदर्शित किया। अलग अलग व्यवसायों की ड्रेस पहने हुए वकील हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं, सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं कार्य कर रही हैं। आदरणीय पूनम बहन जी ने यूपी, पंजाब, राजस्थान अनेक स्थानों पर सेवाएं दी हैं। पिछले 40 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। आपने साइकोलॉजी में पीजी किया, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने स्पेशलाइजेशन किया है। आपके लिए हम कहेंगे अभिमन्यु आध्यात्म जगत की, क्योंकि आप माता के गर्भ में थे तभी आपके माता पिता इस ईश्वरीय ज्ञान को अपनाकर सेवाओं में समर्पित हो गए थे। तो अभिमन्यु आध्यात्म जगत की बचपन प्रभु छाओं में बीता, राजस्थान की राजधानी में आप सुना रही सच्ची शिव गीता। आदरणीय पूनम बहन जी,
ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता शिव की शिव शक्तियां जो आज देश का गौरव है, वंदनीय पूजनीय है, मंच पर विराजित नारी शक्ति शिव शक्ति आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन अनीता बधेल, बाल कल्याण महिला विकास मंत्री राजस्थान, हमारी आदरणीय अनेक ब्रह्मा कुमारी राजयोगी बहनों की प्रेरणा स्रोत आदर्श में चक्रधारी दीदी और हमारे वरिष्ठ संस्था के चीफ सेक्रेटरी जनरल निवेद भाई जी एवं अन्य सम्माननीय मेहमान, विषय बहुत सुंदर है, परमात्म शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन और उसमें नारी की भूमिका। परमात्मा को भी सृष्टि से असुरों का सफाया करने के लिए 108 शक्ति देवियों की आवश्यकता हुई, ये बात हम नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती की कहानी में सुनते हैं। और वो 108 शिव शक्तियों ने विश्व से आसुरी वृत्तियों का सफाया किया। वो कौन है जिनका गायन है, पूजन है? वो हम सब नारी शक्ति है। हम विश्व परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन किस दिशा में, सुखद समाज हो, समृद्ध हमारा देश हो, उन्नति के शिखर पर हम पहुंचे, इसमें राजनीति, शिक्षा, न्याय, विज्ञान सब क्षेत्रों में उन्नति होनी बहुत आवश्यक है। और समाज के इन विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति पर उसका आधार मानव है, मानव इकाई है। मानव में नैतिकता, आध्यात्मिकता का जब समावेश होता है और दैवी संपदा का जब उसमें विकास होता है, तब मानव सच्चरित्र कहलाता है। और ऐसे चरित्रवान मानव का निर्माण कौन करती है? निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका नारी निभाती है। नारी पर यह दायित्व आ जाता है, माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, दोस्त, सेविका के अनेक रूपों में नारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। और आज की जो समाज की विषम परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में नारी अंधकार में एक प्रकाश की किरण बन सकती है, डूबती नैया को पतवार बनकर किनारा दे सकती है। तो इस सपनी जिम्मेवारी को निभाने वाली नारी, उसमें भी कुछ गुणों का, कुछ मूल्यों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। जितनी ऊंची जिम्मेदारी, उतना ही त्याग, समर्पण, सेवा और मूल्य होने जरूरी है। तो हम जब कहते हैं चरित्रवान नागरिक हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, उसके लिए चरित्र क्या है, जिसमें सकारात्मक सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो वर्तमान जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, ये शिक्षा पुरुष नारी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है और ये शिक्षा बुद्धिजीवी बना रही है। विभिन्न क्षेत्रों में नारियां आगे बढ़ रही हैं, विवेक प्रधान बनती जा रही हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भावना, क्या भाव विहीन हो जाना ये समाज के लिए ठीक है? नारी सुलभ विशेषताओं को खो देना, मधुरता, विनम्रता, मृदुलता, करुणा, स्नेह, जो विकास के दौड़ में पुरुष के साथ कंधा मिला के चलना समय की मांग है और समय के अनुसार उन्हें अपना बुद्धि का योगदान भी देना है, बुद्धि चातुर्य से, बुद्धि बल से देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है। लेकिन जो उनकी प्रकृति प्रदत्त गुण है, प्रकृति प्रदत्त जो उनकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को छोड़ दें तो संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। और प्रकृति प्रदत्त योग्यता, माँ के रूप में बच्चों को संस्कारित करना, परिवार में एकता बनाए रखना और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनाना, ये पहली जिम्मेदारी है। चाहे हम कितनी ऊंचाइयों पर आ जाएं, किसी भी क्षेत्र में परचम लहरा दें, लेकिन पहले हम कौन हैं? पहले हम माँ हैं, नारी हैं, मित्र हैं, पुत्री हैं, आदर्श पत्नी हैं। अपने इस भूमिका को कभी नहीं हम भूलें। तो विश्व परिवर्तन की भूमिका निभाने में महिलाओं का मेंटली स्ट्रांग होना भी उतना ही आवश्यक है। जहां इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वहां इमोशनली मेंटली भी मैच्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। और विचार, भावनाएं, व्यवहार उत्तम है तो कहेंगे वो आंतरिक रूप से शक्तिशाली है, मजबूत है। क्योंकि महिला वहीं पराजित हुई जब उसने अपनी आंतरिक शत्रुओं पर विजय नहीं पाई। बाहर शत्रु तो हैं, समाज में उसे अपना स्थान बनाना है इन शत्रुओं से लड़ते हुए, लेकिन आंतरिक शत्रुओं पर भी उसे विजय पानी होगी। और वो आंतरिक शत्रु हैं लालसा, असीम कामनाएं, इंद्रिय संयम का अभाव, मर्यादा विहीन नारी, जबकि शील संयम मर्यादा उसका श्रृंगार है, उसकी शोभा है। तो जो वर्तमान में विकट परिस्थितियां मिली, उसको चुनौती को स्वीकार करके बढ़ें, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और अपनी संपूर्ण योग्यताओं और शक्तियों का उपयोग करें। एक छोटी सी उदाहरण से मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाहती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की एक छोटी सी कहानी। पांच भाई थे, उनकी माँ नहीं थी। माँ ना होने के कारण वो जहाँ खेती करने जाते थे, उन्हें खेती के बदले में जो मजदूरी मिलती, वो मजदूरी ना लेके चना और गुड़ लेना पसंद करते थे। कौन भोजन पकाएगा, कौन भोजन की सामग्री जुटाएगा? तो गुड़ और चना लेकर आते और रात को वो खाके सो जाते। जब बड़े भाई का विवाह हुआ और उसकी पत्नी आई, उसने घर देखा, झोपड़ा जो शायद रहने लायक भी नहीं था, और पांच चूल्हे थे पांचों भाइयों के अलग अलग। उसका कलेजा मुंह को आ गया कि मैं कहां आ गई, और दिल में आया मैं जाऊं यहां से भाई भाभी के पास। उसके भी माता पिता नहीं थे, पर सोचा भाई भाभी के पास जिंदगी कैसे गुजारूंगी। आत्मिक शक्ति जागृत हुई, मनोबल हिम्मत रखी और उसने क्या किया, वहां जो औरतें आई थी उसे मिलने, एक बूढ़ी औरत ने कहा कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मदद दे दूंगी, जो चाहिए ले लेना। उसने चार चूल्हे तो खत्म कर दिए, एक चूल्हा रखा और फिर उस बूढ़ी औरत के पास जाके कहा मुझे कुछ साग बनाने के लिए दे दो, बथुआ पालक आदि, मैं लौटा दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने उसको साग के लिए सामान दिया, चटनी दी और वो लेकर आई। जब वो पांचों भाई घर आए, उन्होंने देखा इसने चूल्हे खत्म कर दिए, उन्हें बहुत बुरा लगा, पर उसने उस सामग्री से सब्जी बनाई, साग बनाया और उनको कहा जाओ इसके बदले अन्न ले आओ सेठ से। अन्न लाए, रोटी पकाई, सबने अच्छे से भरपेट भोजन किया। बाद में उसने सबको कहा कि वहां जाना, मजदूरी लाना या अन्न लाना, उनको भी सुकून मिला, भरपेट भोजन मिला, धीरे धीरे हालात बदले। बात छोटी है, लेकिन ये उसके आत्मबल को, उसके साहस को, उसकी हिम्मत को दर्शाती है। पलायनी परिस्थिति से जो आज हम देख रहे हैं, बदलते परिवेश में छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहे हैं, सहन शक्ति की कमी, बर्दाश्त नहीं हो पता है, परिवार को बनाना वो भावना नहीं जैसा मिला, प्राप्त परिस्थितियों को स्वीकार करके और अपनी संपूर्ण शक्ति उसमें लगाकर यदि वो परिवार बनाती है, प्रेम का वातावरण बनाती है, तो जब परिवार में प्रेम से रहना सीख जाते हैं तो समाज में भी प्रेम से और विश्व में भी प्रेम से रह सकते हैं, रहेंगे और ये लड़ाई झगड़े का माहौल समाप्त होगा। तो नारी होना एक गर्व की अनुभूति है, ईश्वर की एक सुंदर रचना है। अपनी इस पुरुष के साथ समानता में नारीचित गुणों को नहीं त्यागा जाए तो अच्छा है। स्वीट, सोबर और केयरिंग नेचर ये नारी की विशेषता है, और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना, एक अच्छी पीढ़ी आगे समाज को देना, ये उसका पहला दायित्व है। लेकिन भौतिक दृष्टि से ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, परंतु उन ऊंचाइयों पर कायम रहें उसके लिए आवश्यक है अनुशासन और संयम। नहीं तो शिखर पर पहुंचने के बाद भी जब आत्म अनुशासन नहीं हो, संयम नहीं होता, तो अच्छे अच्छों का मन डामाडोल हो जाता है और आत्मज्ञान और संयम की सीढ़ी से ही हम आगे बढ़ेंगे, एक से भी हटे पैर फिसला और सीधा पतन पर आते, धरातल में आ जाते। तो नफरत नहीं, प्रेम की सीढ़ी चढ़े, ईमानदारी की कमाई की रोटी खाएं, उसमें बरकत है, और बेईमानी की रोटी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। जो हमारे संस्कृति में ये बात है और हमारे संस्कारों में है कि ईमानदारी की कमाई बरकत देती है। और तीसरी बात, हम अपरिग्रह को अपनाएं, आवश्यकता से ज्यादा लालसा रख के संग्रह करना चीजों वस्तुओं का, फिर उसके कारण साथी, जीवन साथी को भी दबाव डालना कि वो भी कहीं से अनावश्यक अनीति से धन लाए, उसका परिणाम बहुत भयंकर है। तो अपरिग्रह का गुण ये बहुत कुछ हमें दलदल से बचाएगा। और कहते हैं जरूरत से ज्यादा जो संग्रह करते, जमा करते, वो भी एक प्रकार की चोरी है। आखिरी पॉइंट में एक बार और कहना चाहूंगी, आप लड़कियों को संस्कार देती हैं, पराए घर जाना है उसे, लेकिन लड़कों को भी ये शिक्षा दें, हर नारी का मान करे, हर नारी को माँ और बहन समझे। और प्रकृति में भेद है, प्रकृति के भेद को हम स्वीकार करते हैं शरीर की बनावट अनुसार, रोल के अनुसार, लेकिन शरीर को भी चलाने वाली आत्मा है, आत्मा के मूल्यों पर भी ध्यान दिया जाए, आत्मा के गुणों पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करें, उनको विकसित करें। अंत में मैं एक छोटी सी मिसाल देके बात समाप्त करती हूँ। विश्वामित्र ने वर्षों तपस्या की और वर्षों की तपस्या में जब उनके सामने अप्सरा मेनका आई तो उनका तप भंग हो गया। क्यों? इतने वर्षों की साधना और एक सुंदरी को देखने से उनका तप खंडित हुआ, क्योंकि उन्होंने नारी रूप देखा, सौंदर्य को देखा, आभूषण देखा, लेकिन उसमें जो आत्मा स्थित है, जो ऊर्जा पुंज है, जो तन को चला रही है, जो शक्ति पुंज है, उसको नहीं देखा। यदि हम सबको इस तन वस्त्र में आत्मा देखेंगे और मस्तक में भ्रकुटि से नीचे हमारी दृष्टि नहीं जाए तो मन विचलित नहीं होगा। और समाज में जो आज नारियों के साथ अनेक तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं, बहुत खत्म हो जाएंगे। सोच बदले, विचार बदले, आत्मभाव, भाई भाई की दृष्टि जब आ जाती है तो एक सुंदर स्वस्थ समाज बनता है, परिवर्तन आता है, और समाज के परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन आता है। और इन सब का आधार आध्यात्म राजयोग की शिक्षा है, जो आप 3 दिन यहाँ क्लासेस में लेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन जी, आपने बहुत सुंदर अनुभव युक्त विचार हम सबके समक्ष रखे। आपने प्रेरणा दी हमें भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनना है, और अपने आंतरिक शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करनी है, तभी हम परिवार के वातावरण में सुख शांति ला सकेंगे, परिवार की एकता को बनाए रख सकेंगे। नारी परमात्मा की सुंदर रचना है, तो मैं कहूंगी, गंध सुमन में चांद गगन में, निर्झर में ज्यों वारी है, नूर नयन में है जैसे, सृष्टि में ऐसे नारी है। लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ हमें अपने आंतरिक सौंदर्य को भी बढ़ाना है, और उस आंतरिक सौंदर्य के विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें वो प्रत्यक्ष करने में मदद करता है। और अब हमारे अगले वक्ता के रूप में प्रस्तुत होंगी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी। आप जबलपुर से पधारे हैं, आप राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट हैं, और 1990 से आप सार्वजनिक सेवाओं में हैं। 1999 में पार्षद चुनी गई, तब से लगातार 4 बार आप पार्षद बने हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य हैं, आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, एवं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्तमान में आप चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो अपना संबोधन हमारे समक्ष रखेंगे।
ओम शांति। परम प्रिय ब्रह्मा बाबा के चरणों में वंदन, शिव बाबा के चरणों में वंदन। मंच पर श्रद्धे बीके सतीश जी, हमारे बीच में अभी उद्बोधन दिया ऐसी बहन पूनम जी, बीके चक्र धारणी जी, अभी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बहन डॉक्टर वीके सविता जी, और जयपुर से पधारी हैं राजस्थान से महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनीता बघेल जी, राज्योगी बीके नरवार जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, कमिश्नर जयपुर प्रेरणा जी, और मंच पर परम सम्मान्य उपस्थित मातृशक्ति। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, जो ईश्वर ने आज का दिन हमें चुना है आपके बीच में आने का। प्रारब्ध पहले तय करता है कि हम कहां और किस भूमि में मिलेंगे। ईश्वर में यहां पर मैं 2007 में महिला वुमेन सम्मेलन में आई थी और बाबा के उस समय में श्रोता बनकर आई थी। बहनों के मुझे बहुत ही अनुभव प्राप्त हुए थे और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर आपके बीच में अपने अनुभव बांटने आई हूँ। और जो विश्व परिवर्तन में महिलाओं की क्या भूमिका है उस पर अपने अनुभव कुछ बांटना चाहूंगी। ये कहते हैं कि धरती जननी जन्मभूमि है, उसी तरह कहते हैं माता जन्म जन्मदात्री है, और शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं माँ पहली गुरु है। ये हम अध्यात्म में भी पढ़ते आए हैं और अपने माता पिता से ये हमें प्राप्त भी हुआ है। कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका में महिलाओं का आदिकाल से विशेष योगदान रहा है। जैसे अभी बहन पूनम जी ने कहा कि लक्ष्मी सरस्वती और काली ये पृथ्वी का संचालन कर रही हैं। वास्तव में लक्ष्मी है धन का संचालन कर रही और शक्ति है शौर्य का संचालन कर रही। और जहां हम कहते हैं ज्ञान का, तो ज्ञान से ही तो हमारी सारी केंद्रित होती हैं हर चीजें, वहां पर माँ सरस्वती संचालन करें। मैंने ये पढ़ा है कि 1857 में एक क्रांति आई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरी एक भूमि का टुकड़ा कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी शक्तिशाली हो। और इस उनकी मानसिक प्रेरणा ने एक बदलाव दिया और उन्होंने प्राण निछावर करते हुए अपनी भूमि को अपने जीते जी किसी के हाथों में जाने नहीं दिया। ये परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो महिला एक बीज रूप में हमारे सामने आई और 1857 की कहानी उसने बदल दी। इसी तरह 19वीं सदी में ऐतिहासिक हुए, जैसे हमारे बीच में दादी जानकी, जिन्होंने वैचारिक क्रांति इस धरा पर अपने बहनों के बीच बांटे। हम कहते हैं कि दादी हरिदया मोहिनी जी ये वैचारिक क्रांति है, रत्ना मोहिनी जी भी चक्रधारिणी, वीके चक्रधारिणी भी ये वैचारिक क्रांति है, जिन्होंने 19वीं सदी में ये संकल्प लिया कि हम वैचारिक क्रांति से विश्व की हर परिवर्तन की दिशाओं को धरती के संतुलन में बांटेंगे। आज वही का प्रतिफल है कि यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के चरणों में सभी हमारी बहनें बैठी हैं और आज उनका आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाएंगी। इसी तरह मैं ये मानती हूँ कि जब 19वीं सदी में ये परिवर्तन हुआ तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, आपने देखा होगा कि लोकसभा जो हिंदुस्तान की एक ऐसी सीट है जिसको पूरे हिंदुस्तान के सांसद चुनकर जाते हैं, ऐसी मीरा कुमार और आज वर्तमान में सुमित्रा महाजन जी संचालन कर रही हैं। ये शक्ति का अद्भुत स्वरूप है। मैं यही मानती हूँ कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे अंदर की क्षमता कैसी होना चाहिए, आपने देखा होगा कि विभिन्न स्टेटों में आज नेतृत्व की क्षमता बहनाएं कैसी कर रही हैं। मुख्यमंत्री देखें वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री देखें तो अभी हाल में ही जया ललिता जी, अभी मुख्यमंत्री देखें तो शीला दीक्षित जी, इन्होंने इतिहास रचे हैं और वो जो पुरानी रूढ़िवादी है उस संस्कारों को बदला है। शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कहेंगे कि सावित्री बाई फुले, जिस समय पर बहनों को शिक्षा के अधिकार नहीं थे और इन बंधनों में जकड़ दिया गया था कि सिर्फ ये बहनें घर का ही काम करेंगी और दासी के रूप में घरों में कैद होकर रह जाएंगी, उस समय पर 1800 सदी में श्रीमती सावित्री बाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई और हमें ये नई किरणों में बाहर लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये मानती हूँ कि 20वीं सदी में हम जब प्रवेश कर गए तो आज अध्यात्म में हम देखेंगे कि हम जब पढ़ते हैं कि शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर है, तो ये हमें अपने आप अनुभव होने लगा कि जब शिव शक्ति अर्धनारीश्वर है तो ये हम मानकर चलते हैं कि दोनों पति पत्नी बराबर के पहलू पर आकर खड़े हो गए हैं। जहां पर हम ये मानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं अर्धनारीश्वर हमारी शक्ति है। जहां हम एक बार ये कहते हैं कि विश्व संक्रमण काल से गुजर रहा है, वास्तव में हम ये कहना चाहेंगे कि आज बहुत ही परिवर्तन की जो हम मूल स्वरूप को यहाँ देख रहे हैं कि विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन की एक ऐसी अलग सामने आने वाली है कि जहाँ महिलाओं ने अपने शर्व शक्ति और शौर्य से इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं कहना चाहती हूँ शौर्य के क्षेत्र में भी कहा जाए तो जहाँ पर आज बेटियां अस्त्र शस्त्र से लैस होकर सैन्य में भर्ती हो रहे हैं और इस भूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण निछावर करने में कहीं पीछे नहीं है, तो ये विश्व में महिलाओं के परिवर्तन की लहर नहीं तो हम क्या कहेंगे। वहीं पर मैं ये कहना चाहूंगी वायुयान में महिलाओं की भूमिका आप देखेंगे तो आज वो स्वयं विमान को खुद चला रही है, ट्रेन को चला रही है। विज्ञान के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जहां पर उन्होंने ऐसी कल्पना चावला और सुनीता विलियम ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं, तो ये विश्व में एक महिलाओं की परिवर्तन की लहर नहीं है तो क्या कहेंगे हम इसे। आज प्रोफेसर के क्षेत्र में डॉक्टर बनकर सेवा दे रही, संगीत के क्षेत्र में आपने देखा होगा 19वीं सदी की गोल्ड हमारे बीच में लता मंगेशकर है, जिसको हम हिंदुस्तान का कोहनूर कहते हैं, ये क्या कम हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहां राजनीति क्षेत्र में बहनें अपने काम कर रही हैं, मैं तो यही कहूंगी कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, नहीं फूलों की सेज, जीवन एक संघर्ष है, नहीं फूलों की सेज, भले काम के वास्ते ब्रह्मा देता भेज, भले काम के वास्ते ब्रह्मा देता भेज, चाहे पैदल चल रहे, चाहे पैदल चल रहे, चाहे उड़ो विमान, चाहे पैदल चल रहे, चाहे उड़ो विमान, मन में होना चाहिए, मन में होना चाहिए मानवता का ज्ञान, यही हमारा मूल स्वरूप है, यही हमारा श्रृंगार है, जैसे हमारी बहनों ने आगे बोला। मैं इसी आशा विश्वास के साथ में ब्रह्मा बाबा के चरणों में वंदन करती हूँ और मुझे ये सौभाग्य राष्ट्रीय सम्मेलन में आज प्राप्त हुआ है, इसे भी मैं ईश्वरी स्वरूप ब्रह्मा बाबा का ही प्रसाद मानती हूँ। मुझे समय समय पर उनका विशेष स्नेह और विशेष उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं अपने एक छोटा सा अनुभव आपको बांटूंगी। जब मैं 2007 में यहाँ आई, मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली, वाकई में मन बड़ा चंचल होता है और मन इतना चंचल होता है कि ये वायु से तेज भागता है, कैसे करें इसे कंट्रोल। जब मैं यहाँ आई, यहाँ बहनों से मुझे उस समय पर दादी जानकी जी के मुझे अद्भुत वचन प्राप्त हुए, कहते हैं जब मन बहुत विचलित हो और आपको लगने लगे कि हम कहीं धारा से भटक रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने संयम को, अपने पेशेंस को बिल्कुल एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए ध्यान में कर लें, सारी बाहर की बातों को त्याग कर अंदर स्थित हो जाए। तब अंदर देखते हैं हम, अपने नेत्रों को जब बंद करते हैं तो वास्तव में एक चमकता दिव्य दृश्य के रूप में हमारे सामने सूर्य से भी छोटा कण हमारे मस्तिष्क में आलोकित करता है और वह कहता है कि अब तुम इधर उधर मत भटको, आत्मा की आवाज सुनो और स्वयं निर्णय लो। ये प्रेरणा मुझे ब्रह्मा बाबा के श्री चरणों में यही प्राप्त हुई है। मैं यहाँ पर आकर अपने आप को धन्य मानती हूँ और अपने अनुभव आपके सामने बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा महाजन जी, बहुत ही
सुंदर अनुभव युक्त विचार आपने हम सबके सामने रखे। आपने वैचारिक क्रांति की बात की तो सचमुच ये देखा गया कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि हर चीज की जड़ मन में है। कहते हैं सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलें तो किनारे मिल जाएंगे। तो मन की दिशा बदल जाए तो परिवर्तन वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, जिसके बारे में आपने कहा, आत्मदर्शन हम करें, सेल्फ रियलाइजेशन हम करें, जहां हमें समझ में आता है कि मैं केवल ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप बहुत ही शांत, पवित्र और शुद्ध है, वहीं से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और अब हम मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को, जिनका परिचय आपको कल भी प्राप्त हुआ है। आप महिला प्रभाग की अध्यक्षा हैं, आपके निर्देशन में ही सभी महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम संपन्न होते हैं। आप रशिया के 50 से भी अधिक सेवा केंद्रों की डायरेक्टर हैं, और दिल्ली शक्तिनगर से संबंधित सेवा केंद्रों के भी आप संचालिका हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। ऐसी विशेषताओं को संजोए हुए हमारी चक्रधारी दीदी हैं, और बहुत ही मधुरता से, बहुत ही कुशलता पूर्वक वो अपने भाव अपने उद्बोधन में रखते हैं। आदरणीय चक्रधारी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीसरा चांस मिल जाता है, जिन्होंने ना कहा वो भी कह सकते हैं। मंचा सिंह अपनी महान विभूतियां, जिन्हें आज की मंच में मेहमान कहा गया, ऐसे महान मेहमानों को तथा मेरे साथ ही बैठे आदरणीय राजयोगी भ्राता, विशिष्ट भ्राता, विशेष भ्राता निर्वैर जी, मेरी राजयोगिनी बहने तथा मेरे सन्मुख उपस्थित आप सभी ईश्वरीय प्रेमी बहने और भाई, आज इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र है। जिस उद्घाटन सत्र में इस कॉन्फ्रेंस का विषय स्पष्ट करना मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है। मैं इस विषय को तीन भागों में बांटूंगी। पहला है परमात्म शक्ति, दूसरा है विश्व परिवर्तन, और तीसरा आता है नारी की भूमिका। इन तीन भागों को सामने रखते हुए मैं प्रथम भाग नहीं लेकिन मध्य भाग को आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज इस विश्व में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। आप समझते हो कि विश्व में जिस प्रकार की समस्याएं चारों तरफ मंडरा रही हैं, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पांचों द्वीपों में कुछ लंबे लंबे समय तक रहकर आई और इस चीज का अनुभव किया कि समस्याएं पूरे विश्व भर में हैं। हाँ, समस्याओं के रूप अपने अपने हैं, लेकिन ऐसे समस्या प्रधान विश्व में मैं नहीं समझती कि कोई संतुष्ट होगा कि जैसा संसार है ऐसा ही संसार हमको चाहिए था। हर मनुष्य आज इस संसार की परिस्थितियों को देखते हुए और समस्याओं को देखते हुए मन में सोचता अवश्य है कि इस संसार का आखिर भी परिवर्तन होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि चारों तरफ अनाचार अत्याचार, चारों तरफ दुख और अशांति, रोग और शोक, मानव मात्र के अंदर संतुष्टता नहीं, आपस का सच्चा प्यार नहीं, एक दो के प्रति स्नेह और सहानुभूति नहीं। जब इस प्रकार के संसार की दशा देखता है मनुष्य तो समझता है कि ऐसा था नहीं संसार, लेकिन ऐसा होता जा रहा है। परंतु मैं आपको यही खुशखबरी देना चाहूंगी कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस बात का संदेश सबको दिया जा रहा है कि अब ये विश्व बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसके परिवर्तन के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। बिना ईश्वरीय ज्ञान और बिना ईश्वरीय शक्ति के संसार का परिवर्तन कोई मानव मात्र नहीं कर सकता। जहां तक मेरी बहनों ने महिलाओं के परिवर्तन की बात की, बहुत सुंदर बातें सुनाई, ये है भौतिक परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन, लेकिन हम केवल मात्र भौतिक परिवर्तन से संतुष्ट नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं आंतरिक परिवर्तन और आंतरिक खुशहाली और आंतरिक सुख और शांति। जब तक वो नहीं तब तक अपूर्ण सा जीवन प्रतीत होता है। आज परमात्मा पिता, क्योंकि विषय है ये कि परमात्म शक्ति परमात्मा के पास मूल रूप से मैं कहूंगी दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का सागर सिवाय एक परमात्मा के कोई मानव मात्र नहीं हो सकता है। उन्हें ओशन ऑफ नॉलेज कहकर पुकारा गया और वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उनके पास ना हो। अब सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर जब इस विश्व का परिवर्तन करते हैं तो विश्व परिवर्तन में इन दो चीजों का आधार लेते हैं। जो अपने जीवन काल में ये परिवर्तन होता देख रहे हैं और किस प्रकार परमात्मा इस संसार का परिवर्तन बड़े सूक्ष्म रूपेण कर रहे हैं, ये वही जाने जिसने अनुभव किया है। अनुभवी अनुभव सुना सकता है, लेकिन अनुभव कर उस अनुभव को पा सकते हैं, ये अनुभव कोई एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अब उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को, क्योंकि हम सब समझते हैं व्यक्ति विश्व की इकाई है, जब तक व्यक्ति नहीं सुधरा परिवार नहीं सुधर सकता, समाज नहीं सुधर सकता, देश नहीं सुधर सकता, विश्व नहीं सुधर सकता। अब व्यक्ति को सुधारने के लिए उन्होंने ज्ञान को आधार लिया और सबसे पहले ये बात सुनाई, हे मानव तो इस संसार में अशांत तो दुखी क्यों है। उसका एक कारण उन्होंने सुनाया, दिनों दिन तेरी इच्छाओं में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि तू स्वयं को देह समझता है और देह की कर्म इंद्रियों को ग्रेटिफाई करना, संतुष्ट करने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि देह ये नाशवान चोला है, ये प्रकृतिकृत चोला है और जो चीज बनती है वो मिटती है, वो अविनाशी नहीं होती। इसलिए तो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए साधनों को एकत्रित करना चाहता है और तेरी इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। गायन है, आप भया बूढ़ा इच्छा भई जवान, दिनों दिन इच्छाएं बढ़ रही हैं। आज बूढ़े भी बाल काले, दांत लगवाए, गोल्डन चश्मा लगाए, पैंट पहने, अपने आप को समझते हम भी जवान है, क्या समझते हो। जवान तो बन सकते हैं, लेकिन जीवन की जो जवानी है, जो उनके जीवन की श्रेष्ठता और रूहानियत है, वो जवानी कहाँ है आज। और परमात्मा ने हम बच्चों को एक आदेश दिया, अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो एक बात मेरी मान लो। वो एक बात कौन सी? इच्छा के बिना तो मनुष्य नहीं चल सकता, लेकिन इच्छाओं पर कुछ अंकुश लगा लेना। अगर तुम्हारी 50 इच्छाएं होंगी, 45 इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो गई और 5 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपको 45 इच्छाएं पूरी होने का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप इसी तड़पन में रहेंगे कि ये 5 मेरी इच्छाएं कब पूरी हो। तभी कहते एक सेठ जी से, सेठ जी को आया मुनीम जी से, पूछो तो सही कि मुनीम जी कितना पैसा रखा है तो मुझे बता सकते हो। तो मुनीम जी ने कहा, मैं एकदम गिनती तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपकी 10 पीढ़ी खा सकती हैं। सेठ जी छटपटा कर चिल्ला उठे, अरे मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, मुझे ये चिंता है। आज का मानव जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं है और जो नहीं प्राप्त है उसकी चिंता बहुत करता है। और ईश्वरीय ज्ञान कहता है अपने जीवन को प्राप्तियों से संपन्न न करो, संतुष्टता से संपन्न करते चले जाओ। जब आपके जीवन में संतुष्टता आती चली जाएगी, थोड़ा भी मिलेगा तब भी संतुष्ट होगे, किसी से कभी कंपेयर नहीं करना। क्योंकि जब हम दूसरे से अपना मुकाबला करते हैं तब हम अपने को कभी नीचा ऐसा समझकर निम्न भावना लाते हैं और कभी किसी से अपने को ऊंचा समझकर अभिमान की भावना में चले जाते हैं। ईश्वर ने हम बच्चों को कहा, तू अकेला है, तू सारे जगत में टटोल कर देखा, तेरे जैसा क्या दूसरा कोई है? अगर एक भी दूसरा तेरे जैसा एग्जैक्ट मिल जाए तो तू मुझे दिखा देना। इसलिए जब तू विशेष है, विश्व का एक ही तू है, तो तू भला बता कि तू अपने को दूसरे से कंपेयर क्यों करता है। इसलिए ना किसी से कंपेयर करो, ना कभी हीन भावना में आकर निम्न समझो और ना कभी उच्च भावना में आकर के। शायद ये ज्यादा ही मोहित हो रही है मेरे ऊपर, तितली तो है। लेकिन मुझे फूल में इतनी खुशबू तो नहीं है जी, क्योंकि ये जा नहीं रही, तो आप कहें तो मैं इसे भगा कर आऊं थोड़ा, या कोई पकड़ ले इसको। तितली तो आती है फूल से सुगंध लेने के लिए, ईश्वर शायद कोई सुगंध खास इसे देना चाहता होगा, उसे भी ज्ञान अच्छा लगता होगा, प्राता जी कह रहे हैं। तो मैं यही बात कहना चाह रही थी कि ईश्वर ने हम बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सदा संतुष्ट रहना, हाँ पुरुषार्थ अवश्य करना, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना, प्रातः से शाम तक मेहनत भी करनी पड़े तो मेहनत अवश्य करना, लेकिन कभी अपने को किसी से मुकाबला नहीं करना, कभी अपने में कोई हीन भावना या अभिमान की भावना ना लाना। ये मैं थोड़ी थोड़ी बात सुनाऊंगी, क्योंकि इतना समय नहीं कि मैं आपको सारी बातें सुनाऊं। ये ईश्वर ने हमको व्यक्तिगत रूप से कहा, तो इन इंद्रियों को संतुष्ट ना करना, ये इंद्रियों को जितना संतुष्ट करेगा इतनी इनकी भूख बढ़ती चली जाएगी, और इनकी भूख को मिटाना ये तेरे वश का काम नहीं है। इसलिए याद रखना, ये इंद्रियां तेरे कर्मचारी हैं, ये तेरे कार्यकर्ता हैं, तू कार्यकर्ता के अधीन ना हो जाना, तू कार्यकर्ताओं का मालिक है, स्वामी है, अपने स्वामित्व को ना भूल जाना, अपनी श्रेष्ठता को ना विस्मृत हो जाना, अपनी महानता को याद रख करके इस संसार में चलना, तो बहुत महान आत्मा है। कभी अपने को कॉमन साधारण ना समझना। कोई अपने को गरीब कहता है, कितना अच्छा किसी ने एग्जाम्पल दिया, किसने कहा कौन कहता है तू गरीब है, कहा महाराज गरीब हूँ, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं है, मेरे जैसा गरीब कोई और नहीं सकता है। उसने कहा ठीक है, अगर तू गरीब है तो एक मेरा कहना मान, मैं तुझे अमीर कर दूंगा, तू मुझे अपनी एक बाजू दे दे, 2 लाख रुपया मैं तुझे दूंगा। कहा नहीं मैं देने वाला नहीं हूँ। कहा 2 लाख रुपया दूंगा। कहा नहीं दूंगा। कहा दोनों दे देगा तो 6 लाख रुपया दूंगा। कहा नहीं दूंगा, दोनों बाजू देखकर मैं अपंग कैसे बन जाऊं। कहा चलो एक टांग दे दो। कहा लंगड़ा नहीं बनना। कहा 8 लाख दूंगा। कहा मैं एक भी नहीं लूंगा, मैं 8 लाख लेके लंगड़ा बन के कैसे चलूं। उन्होंने एक एक अंग का मूल्य लगाया, और मूल्य लगाने पर करोड़ों का वो शरीर बना, और कहा तुम कहते हो मैं गरीब हूं, तुम करोड़ों के स्थान को लिए घूम रहे हो और तुम कहते हो मैं गरीब हूँ। अरे तेरे पास ये तन है, ये बुद्धि है, कुछ कार्य करके जीवन की रोजी रोटी तो कमा सकता है, तो क्यों अपने को निर्धन समझता है। इसलिए ना हम निर्धन हैं, ना हम निर्बल हैं, हम बलवान हैं, क्योंकि हम भगवान के इंसान हैं, ये कभी भूल ना जाना, हम इस बात को विस्मित हो जाते। ठीक इसी प्रकार कई बार कहते हैं मैं तो शांत हूँ, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि शांत रहने नहीं देती। परमात्मा ने हम बच्चों को कहा कि जिस परिवार में तू रहता है तू सेवा भाव से रहना। जब तू ये समझता है ये मेरा पुत्र है, ये पिता है, ये पति है, अगर मैंने इनका कुछ किया तो इनसे कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए, और जब तुझे वो रिटर्न नहीं मिलता तुझे बहुत दुख होता है, शांति होती है। मैंने बच्चों के लिए सब कुछ किया, मैंने पति के लिए किया, या पति कहते हैं पत्नी के लिए किया, मैंने अड़ोसी और पड़ोसियों के लिए किया। ईश्वर हम बच्चों को कहता है कर्म कुछ भी कर, लेकिन सेवा भाव से कर, ये तेरी सेवा है। और सेवाधारी अगर सेवा करता है और सेवा में स्वार्थ रखता है तो ये सेवा नहीं होती, ये नौकरी होती है। और नौकर तो हमेशा तनख्वाह मांगता है और तनख्वाह बढ़वाने की कोशिश करता ही रहता है, उसे संतुष्ट करो वो संतुष्ट नहीं होता है, वो हमेशा कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ठीक परिवार में रहिए, लेकिन परिवार के साथ अटैच ना हो जाइए, इतना ना चिपक जाइए कि ये मेरा बेटा है, आप सोचिए आज ही आपका बेटा है, इससे पहले भी जो किसी संबंध से आपके पास आया है, और जो आपके पास आज चीज आई है वो सदा के लिए तो नहीं आई, ये कहीं ना कहीं जाएगी अवश्य। ख्याल रखना किसी से अटैच इतना ना हो जाना कि उसका दुख आपका दुख बन जाए और उसका सुख आपका सुख बन जाए। आप अपंग कहलाएंगे, आप ठीक शरीर वाले नहीं कहलाएंगे। इसलिए सबके साथ रहिए, बड़े प्यार से रहिए, अपना समझ कर रहिए, उनके लिए जो भी कुछ कीजिए सेवा भाव से कीजिए, लेकिन इतने अटैच ना हो जाना जो दुखी और सुखी का आप उनको आधार बना लें। किसी मकान की नींव हिल जाए, मकान गिर जाता है, ऐसे आज प्राणी मात्र ने कहा जरूर है, कौन है तेरा कौन है मेरा, छोड़ दे बालक इस जग से नाता, तेरा मेरा छोड़ दे, ये कुछ नहीं खाली कहने मात्र ईश्वर ज्ञान हमको दे रहा है। भाई हम सब की आदरणीय दादी जानकी जी, आप खड़े होकर स्वागत कर सकते हैं।
जानकी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं। आप 100 वर्ष से भी अधिक आयु के, 101 वर्ष की आयु आपकी है, और इस आयु में भी आपके अंदर युवाओं जैसा उमंग है, हर कार्यक्रम में आप उपस्थित होते हैं।
सभी ताली बजा सकते हैं, बैज लगा रहे हैं। सुनते ही सुनते रहो तो जरा तंग भी बोर भी हो जाता है, थोड़ी चेंज आ गया, थोड़ा खड़े हो गए, तालियां बजा ली, अच्छा लगा ना आप सबको भी। अभी और भी कोई आए तो तालियां एक बार फिर बज जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं अभी अपनी बात को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना चाहूंगी, और इसमें यही बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय तो नहीं ले सकती हूँ, बाकी ये कहूंगी कि इस समय विश्व का परिवर्तन मानव के परिवर्तन से संभव है, और इस विश्वविद्यालय में व्यक्ति को ही परिवर्तित किया जाता है, और हम और आप समझते हैं, व्यक्ति ही समझती है, एक व्यक्ति का परिवर्तन व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि आज हमारा विश्व एक छोटे से ग्लोब की न्यायी बन चुका है। अगर एक बात एक जगह पर होती है तो चारों तरफ वो बात को फैलने में समय नहीं लगता है, और विशेष रूप से महिलाएं इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। और मैं इस बात को कई बार कहती हूँ कि कोई कहते हैं अरे कोई बात कह दो महिलाओं को, वो दूसरे को बताए बिना कभी रहेंगी नहीं। कई तो कहते हैं महिलाओं के पेट में तो बात पचती नहीं है, लेकिन ईश्वर देखो बुद्धिवानों के बुद्धिवान ने महिलाओं को ही इस विद्यालय के निमित्त बनाया। उसने देखा इनके अंदर बात तो पचती नहीं, लेकिन ऐसी बात दी जाए जो ये सबको दे दें तो जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए। इसलिए पूरे विश्व भर में जितने भी सेवा केंद्र हैं, सब सेवा केंद्रों पर माताएं और बहनें ही निमित्त हैं। और आज मैं अपने अनुभव से देखती हूँ कि रूस जैसा देश जहाँ कम्युनिज्म रहा और धर्म को एक अफीम का नाम देकर पुकारा गया, लेकिन जब ये ज्ञान वहां माताओं को मिला तो आज उन माताओं ने लगभग 25 वर्षों में 52 सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्रों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर की, और वही उसी देश की माताएं उस ज्ञान को मानव मात्र को देने के निमित्त हमारे सेवा केंद्रों की इंचार्ज कहलाती। उन्होंने अपना जीवन ही नहीं बनाया लेकिन अनेकों के जीवन बनाने का कार्य भी लिया, और माताओं में विशेष गुण पालना का होता है। ऐसा नहीं कि पुरुष वर्ग ने आदेश उपदेश ना दिया हो, इतने शास्त्रों की रचना हुई, इतने वेदों की रचना हुई, इतनी आध्यात्मिक पुस्तकों की रचना हुई, लेकिन उस रचना के पश्चात ज्ञान देने का कार्य अधिकतर पुरुषों के ऊपर ही रहा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ज्ञान देने का कार्य माताओं का क्यों आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल मात्र लेक्चर या भाषण से नहीं हो सकती, इसके लिए ज्ञान जिसको सुनाया जाए उन्हें वो दिव्य पालना भी मिलनी चाहिए। जब तक उनके जीवन की कमी और कमजोरी को सुना ना जाए, उनके जीवन को मान सदृश उनको वो स्नेह और प्यार ना दिया जाए, अपनत्व की भावना उनको ना मिले, तब तक वो उस चीज को अपना नहीं सकते। और माताओं में ये स्वाभाविक गुण है कि वो बच्चे को जन्म नहीं देती, उसको पालना भी देती। पुरुष जन्म दे करके चला जाता है, माँ उसको गोद में संभाले रखती। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये पालना का कार्य स्वयं परमात्मा पिता ने किया, क्योंकि परमात्मा को भी कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो हमारी माता भी है, वो हमारे पिता भी। कैसे माँ रूप बन करके भी हम बच्चों की आज पालना कर रहे हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये लंबा विषय है। और वो पालना जो उन्होंने हमारी की, वो पालना लेने वाले देखिए कितना अच्छा है।
सभी बैठ जाएंगे, कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहनों से अनुरोध करती हूँ गुलदस्ते बैजेस के द्वारा दादी जी का अभिनंदन करें। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
आप सब मुझे सुन रहे थे और मैं समझती हूँ मेरे बोलते ही बोलते आप सबके सुनने पर अपनी दोनों आदरणीय दादियाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी जी, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी हृदय मोहिनी जी पधार गए, इसलिए आप सब मेरे भाषण की ताली बजा दो और ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का। कहते हैं प्रीत जब बढ़ती है तो भक्ति हो जाती है। नारी इस परिवेश में आकर शक्ति हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी यहाँ से अवश्य शिव शक्ति बनकर के जाएंगे। दीदी ने ये भी बताया कि परमात्मा ने ज्ञान अमृत का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा है और इस अमृत की कुछ बूंदे हम लेकर के नहीं जाएंगे, पूरा अमृत कलश ही अपने सिर पर लेकर के जाएंगे, ताकि जब हम अपने स्थानों पर जाएंगे तो उस अमृत कलश से अमृत हम अन्य को भी बांट सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में अनुरोध कर रही हूँ बहन डॉक्टर प्रेरणा शेखावत जी। आप एडिशनल एसपी सिरोही हैं, पिछले 14 वर्षों से आप इस जिले में 14 महीनों से इस जिले में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 2001 बैच के आरपीएस से आप पास आउट हुई हैं और आपने एमए पुलिस स्टडीज के लिए पेपर्स लिखे हैं। सिरोही में आपने ड्रग अब्यूज, इलीगल लिक्वर और चाइल्ड एंड गैबलिंग के अगेंस्ट काम किया है। आपके लिए मैं कहूंगी आंखों में गर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं,
पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, कोशिश में अगर जान है तो मंजिलें तुमसे दूर नहीं। तो आप वो हिम्मत और साहस की धनी है जिससे आपने अपनी मंजिलों को प्राप्त भी किया है और आगे भी अपनी इन मंजिलों को आप पाती रहेंगी कि समाज से आप बुराई समाप्त करने के कार्य में लगी हुई हैं। तो बहन प्रेरणा जी अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे।
नमस्कार। परम आदरणीय दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी और मंच पर विराजित सभी अन्य प्रबुद्ध जन और श्रोतागण, आज आप लोगों के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। साथ ही मैं इस सम्मेलन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ, तो मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है ब्रह्म कुमारी संस्थान में आना, क्योंकि विश्व का एक ऐसा उदाहरण है यहाँ पर जहाँ महिला एम्पावरमेंट स्वतः ही देखने को मिलता है, और इस बात का मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिलक्षित स्पष्ट रूप से होता है कि महिलाएं यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर हैं और विश्व में अद्भुत उदाहरण है ये महिला सशक्तिकरण का। आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं में असीम शक्ति है, अपार शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। हमारा ब्रॉटअप शुरू से ऐसा ही होता है, जब हमको परिवार में हम बड़े होते हैं तो शुरू से यही सिखाया जाता है कि आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं, आप अपने भाई से जो भी है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो चीज मांगते हैं तो पहले आप उनको देंगे। लेकिन हमारा ब्रॉटअप जो है धीरे धीरे समाज की ये पुरानी मानसिकता है, इस वजह से हुआ है। महिलाओं को यदि शिक्षा का अधिकार मिलेगा तो मुझे लगता है ऐसा भेदभाव माता पिता के मन में भी नहीं आएगा कि लड़के और लड़की को बराबर समझे, जबकि मुझे तो लगता है लड़कियों में और महिलाओं में ज्यादा शक्ति है पुरुषों की अपेक्षा। ममता, त्याग, बलिदान ऐसे गुण जो हैं, पुरुषों को अभी 100 वर्ष लगेंगे महिलाओं की बराबरी करने में, तो कभी भी तुलना नहीं करें। उनके अलग गुण हैं पुरुषों के, महिलाओं के अलग गुण हैं, लेकिन महिलाओं के गुण पुरुषों से भी अधिक मुझे विद्यमान नजर आते हैं। और महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है और एजुकेट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हमारा आगे का जीवन कैसा रहेगा ये हम अभी अपनी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो जो हम संस्कृति, हमारी संस्कृति है, अगर उससे साथ लेकर चलें और फिर शिक्षित हों, तो इससे महिलाओं का विकास हर लेवल पे संभव है। आज महिलाएं सभी कार्य कर रही हैं, जो पहले मेल डोमिनेटेड माने जाते थे कार्य, वो भी महिलाएं कर रही हैं, और जितनी सिंसियरिटी से वो घर का काम करती हैं, परिवार को समय देती हैं, उसी सिंसियरिटी से वो वर्क प्लेस पे भी काम करती हैं। देखिए, महिलाओं को एक बैलेंस बनाना पड़ता है कैरियर, चिल्ड्रन और कल्चर में, तीनों में आप कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। आप वर्क प्लेस पे ये नहीं कह सकते कि मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, घर जाना है, मेरा परिवार है, और आप घर पे भी एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि मुझे ऑफिस जाना है इसलिए आज मैं ये काम नहीं करूंगी। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना होता है, और महिलाओं में ये शक्ति है। मुझे समझ आता है कि महिलाओं का सिंसियरिटी लेवल इतना अधिक है, वो हर काम को इतने अच्छे से करती हैं, परफेक्शन लेवल तक ले जाके कोशिश करती हैं कि मुझे कहीं भी अपना 100% देना चाहती हैं हर जगह, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे घर हो। तो अपने को इसमें कोशिश और करनी पड़ेगी कि जो हमारी बहनें पढ़ नहीं पा रही हैं, जैसे आबू रोड़ी आदिवासी बेल्ट है, तो हम देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार ही नहीं लड़कियों को स्कूल भेजने का, जबकि सरकारी स्कूलें हैं जहां पर किताबें मुफ्त में मिलती हैं, दोपहर को खाना मिलता है और ड्रेस मिलती है, यूनिफॉर्म जो है, बहुत सी सुविधाएं सरकार दे रही है। और जैसे जैसे आप आगे लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो आपके अपने आप आपके अकाउंट में चेक आ जाता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि महिलाएं पढ़ें। यदि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो समाज का विकास बिल्कुल नहीं होगा। कहते हैं एक महिला 2 घरों को संवारती है और शिक्षित नारी कभी ना हारी, ये भी आपने सुना होगा। तो यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम अधिकारों के प्रति जागृत होते हैं, हमें कितने अधिकार और हमें दिए हुए हैं ये हम धीरे धीरे जब भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब भी हमें पता चलेगा कि सरकार की कितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, और महिलाएं आगे बढ़ेंगी जब भी तो समाज आगे बढ़ेगा। जैसे एक पक्षी होता है, उसके 2 पंख होते हैं, यदि एक पंख काट दें तो वो पक्षी कभी नहीं उड़ सकता। इसी तरह समाज हमारा कभी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे। सिरोही जिले में महिला शिक्षा बहुत पुअर है। जो भी महिलाएं हमारे पास आती हैं, जैसे कि पति शराब पी के मारते हैं और बच्चे बड़े बड़े हैं, तो हमने उनको समझाया कि शराब पी हुए आदमी में ज्यादा ताकत नहीं होती, आप उसको कुर्सी के बांध दो कैसे मारता है आपको, और आपके बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं तो आपका सपोर्ट मदर का करेंगे, बच्चे उनको भी दिखाई दे रहा है कि हमारे फादर तो शराब पी हुए हैं, घर में पैसे देते नहीं है, कंट्रीब्यूट करते नहीं है, और महिला मजदूरी करके भी बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो भी महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं, वो तो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनको कैसे मार सकती हूँ, कैसे बांध सकती हूँ। तो हमारी मानसिकता शुरू से यही बना दी जाती है कि आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं महिलाएं, जबकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। जैसे समुद्र को पार करने के लिए लंका में जाने के लिए हनुमान जी को याद दिलाया गया जामवंत के द्वारा कि तुम इसको क्रॉस कर सकते हो पूरे समुद्र को और लंका में पहुंच सकते हो, उसी प्रकार मुझे लगता है कि महिलाएं भी उनको याद दिलाने की जरूरत है। आप में बहुत सारी अपार शक्ति है, लेकिन आपको शक्ति को समझना चाहिए। और आप एक महिला कभी दूसरी महिला की दुश्मन नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं महिलाओं के दुश्मन है, आप बिल्कुल इसको गलत सिद्ध कर दीजिए इस प्रवृत्ति को। हमको अब मदद करनी है दूसरी महिलाओं को। समाज में देखिए क्रैब मेंटेलिटी है, क्रैब होता है केकड़ा, वो जैसे ऊपर चढ़ता है तो फिर उसको रोका दूसरे केकड़े उसको पकड़ के नीचे ले आते हैं, वैसे हमारी समाज की मानसिकता ऐसी है कि हमारी बच्ची नहीं पढ़ी तो दूसरे पड़ोसी के या रिश्तेदारों के बच्चे को भी ना पढ़ने दिया जाए। वो कहते हैं क्या करेगी, पढ़ के बिगड़ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाएं पढ़ाई करने से कभी नहीं बिगड़ती हैं, जबकि शिक्षा तो हमें और सभ्य बनाती है, अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती है। हमारे पास बहुत से परिवादी आते हैं कि हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई, तो लड़की को कितना पढ़ाया, साथ चौथी पढ़ाया या फिर नहीं पढ़ाया, तो फिर उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। शिक्षा से हमें हमेशा कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और हमारा हेजिटेशन पीछे छूट जाता है, और हम परफॉर्मेंस की हमें आदत पड़ जाती है कि हम कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम हो तो हम परफॉर्म करें, उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और आज के जमाने में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे जिस परिवार में शादी होती है, देखिए मैरिज इज अ गैम्बल, हमें पता नहीं है कि वो परिवारजन कैसे हैं, हमारी बच्ची को कैसे रखेंगे, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है उसके लिए, ताकि इनकेस अगर आपको नौकरी करनी पड़े तो महिलाएं उसके लिए, अगर आप बिल्कुल ही चौथी पढ़ के दसवीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा सर्विस करने के लिए। और कम से कम आप ग्रेजुएशन तो सोचें, अपनी बच्ची के ग्रेजुएशन से पहले आप माता पिता यदि ठान लें कि ग्रेजुएशन से पहले लड़के की शादी नहीं करनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई भी लड़के का कोई शोषण कर सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें अपने, और एक मदर इन लॉ की आदत होती है, हमेशा बहुओं में कंपैरिजन करती है कि मेरे ये बहू तो ये करती है, हम जब बहू थे तो ये करते थे, हम तो सुबह 5 बजे उठ के पानी भरते थे, बड़ी पापड़ बनाते थे, ये करते थे। तो आजकल की बहुएं अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, और आजकल काम कितना दूसरे तरह का काम बढ़ गया है। तो इसलिए जैसे दीदी ने भी बताया, कभी भी तुलना नहीं करें किसी से, कोई दो बहुओं की तुलना भी नहीं करें, या खुद आप जब बहू थे अब आप सास बने हैं तो वो भी आप तुलना नहीं करें, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषता होती है, कोई किसी काम में अच्छा है कोई किसी काम में अच्छा है, इसलिए तुलना कभी नहीं करें। महिलाओं को पूरा मौका दें और पढ़ने का और आगे बढ़ने का, जब भी हमारा समाज विकास संभव है। धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक्स बहन प्रेरणा शेखावत जी, बहुत अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से आपने महिला शिक्षा के महत्व को हमारे सामने रखा है। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ वाशी से आए हुए नीता एंड श्रद्धा ग्रुप, वाशी नई मुंबई से, उन्हीं बालिकाओं ने हमारे सामने एक नृत्य प्रस्तुत किया है। हमारी आदरणीय दादियों के अभिनंदन में, स्वागत में एक और नृत्य वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और वो जुड़ा हुआ है महाभारत कथा से, अर्थ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की। आप सब जानते हैं महाभारत का ये प्रसिद्ध गीत है। तो बहने मुंबई से आई हुई बालिकाएं हमारे सामने नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
Thank you.
श्रद्धा बहन, बहुत सुंदर नृत्य आपने प्रस्तुत किया। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारी श्रद्धे दादियां आपके लिए अपने वरदानी बोल, अपने आशीर्वचन उच्चारण करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम हमारे आध्यात्म जगत की श्रोमणी नारी शक्ति का प्रतीक, पवित्रता की मूरत, दर्शनीय मूरत, वरदानी मूरत दादियों में प्रथम दादी जानकी जी, जो अपनी आयु के 100 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। आज भी आप प्रतिदिन अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर सेवाओं का निरीक्षण करते हैं, प्रतिदिन यहाँ सायंकाल क्लास में उपस्थित रहकर ज्ञान के अमूल्य वचनों से सबको भरपूर करते हैं। आप विद्यालय की स्थापना के समय पिताश्री जी ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहकर उनकी आध्यात्मिक पालना में पले, माउंट आबू में स्थानांतरित होने के पश्चात आपने पंजाब, दिल्ली, पूना में अपनी सेवाएं की, वहां सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। 1974 में लंदन में जब विदेश सेवा प्रारंभ हुई तो आपने वहां सेवा केंद्र स्थापित किया, और साथ साथ विदेश में आज 140 देशों में जो अपने सेवा केंद्र चलते हैं, उन सभी सेवा केंद्रों का निर्देशन भी आपके द्वारा होता है। वर्तमान में आप यहाँ मुख्यालय में निवास करते हैं। अनेकों बार आपने पूरे विश्व के पांचों महाद्वीपों में परिक्रमा की है, और जिस दौरान आपने लाखों आत्माओं की आत्मज्योति प्रज्वलित कर उन्हें ये दान दिया है, मैं कहूंगी कि आप फ्लाइंग एंजल हैं। इस आयु में भी आप लंदन और अमेरिका तक की यात्रा करते रहे हैं, इस वर्ष भी आपने वो यात्रा की है, और आपको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। आपके मस्तिष्क के कई परीक्षण हो चुके हैं, और उन परीक्षणों में ये सिद्ध हो गया कि दादी जी सबसे स्थिर मन वाली महिला हैं। मैं कहूंगी कि आपकी महिमा में शब्द नहीं पहुंच सकते हैं, शब्दों से आपकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता। निशाने पे लग जाए उसे कहते हैं तीर, दिल में उतर जाए उसे कहते हैं तस्वीर, और हमें आपके आशीर्वचन सुनने को मिले इसे कहेंगे हम सबकी श्रेष्ठ तकदीर।
अच्छा, मैं तीन बारी ओम शांति कहेंगी, पता है सबको। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू। सभी उस नशे में है, महात्माओं का संगठन देख, हम भी, मैं बताऊं, थोड़े समय के लिए महात्मा बनी थी सुना पता है, थोड़े समय के लिए भगवान ने परीक्षा ली महात्मा बनने की, परंतु अच्छा हुआ, खुद को कैसे परिवर्तन में लाना है और विश्व को परिवर्तन में लाना है। बाबा मेरा, मैं बाबा की, पहले दो है, मैं कौन हूँ, ये बाबा ने बचपन में ही अलौकिक बच्चा बनाकर वरदान दिया है। अलौकिक बच्चे, नशा चरावा था आदि से लेकर के, मुझे क्या करने का है, मुझे क्या पहले यहाँ क्या करने का, आज पहला बारी है दादी मेरे साथ बैठे, पहला बारी बैठे रहे। अच्छा, मुझे खुशी बहुत हुई है जे हम दादी से रोज थोड़ा मिनट मिलती हूँ, तो लगता है बाबा ने एहसान में तुम्हारा दादी को भी जो मेरा दिल कहे मेरा बाबा बोलो मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। देखो कितना अच्छा सुंदर मिला है बहन, आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है तो यही दिल्ली से है, मैं बाबा के दिल से हूँ।
लंदन क्यों?
ये दिल्ली से है ना, दादी को भी दिल्ली में अच्छा लगता है, मेरे साथ मुझे फील होता है दादी सदा मेरे साथ रहे। परंतु ठीक है, दिल्ली पहले पहले बाबा ने मुझे मार रखा था, ये पीछे आई है दोनों दिल्ली में बाबा ने रखा इतना प्यारा से, जो जानकी नाम है ना उसमें बाबा ने जैसे गुर्जा दादी हृदय मोहिनी दो नाम है, हृदय मणि मोहिनी हमारे सब हृदय को पिघलाने वाली है दादी को देखा यहाँ देखा है साथ में बैठा हुआ निर्वय भाई बैठा है वो भी सभी के दिल को लेता है तो दिल सभी की दिल आराम से है, दिल हमारी दिल आराम के साथ है, फिर दिल में शिवा की भावना ऐसी है जो बाबा ने है तो बाबा के कमार सारे भी देश के कोई देश नहीं रहा जहाँ पाव नहीं रखा। और आपको पता हो तो मेरे पास 5 रुपया भी नहीं 5 पाउंड भी नहीं है, मैं क्या करूँगी, सफेद कपड़ा खीसा खाली हम मैं सारे मुल्क के वाली। अभी इतना बाबा ने साथी तासर शक्ति दी है, साकार में भी दिया है अजब में भी दिया है। ये मैं दिल की बात सुनाती हूँ, ये शायद पीछे कहाँ से खड़ी हो जा रहा है चारों पास, तुम सामने बैठे इनको यहाँ नहीं बैठे मुँह ऐसे करो मुँह ऐसे करो हाँ मैंने पता है इसके दिल में भी दिल आराम है, इसकी इच्छा ये है दिल में बाबा आपने हम बच्चों को निमित्त बनाया है तो निमित्त बन करके क्या करना है, निर्माण चित्त रहना है, चित्त चित्त ये चित्त का मेरी बहन ने माताए आज का दिन इतना महान है सब अमृत लेकर के मुझे ये इसकी स्मृति बार बार हमारे साथी जो है सब बहन अमृत वेले से बोला बताया अभी अमृत वेला कौन सा है है। बाबा ने ऐसा सिखाया और अभी फिर दादी आई ना तो ये जो गीत बजता है ना हर समय ये भी सिस्टम बहुत अच्छी है, टाइम पर गीत बजता है, बजाने वाला भी एक्यूरेट जिस टाइम चाहिए उस टाइम वो गीत बजाता है, और मुझे तो खास साकार में बाबा माया ने हमें राका बजाया था, बाबा को बजाया था। बाबा ने अपने कमरे में बुलाया, बच्ची अंदर गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। सुनो सब या बोलो, मुझको अपना बना के। ये बाबा की कमाल है, वो हमको अपना बनावे, मैं और को नहीं बना, उनके ही शक्ति से अपना बना के। कभी भी सारी विश्व में सेवा कराते बाबा ने कभी बोझ महसूस नहीं कराया। कभी भी महात्माओं को क्वालिटी है, थोड़ी बेचारों को बोझा हो जाता है सेवा का, होता है ना। तो बाबा ने ऐसे बनाया ना। अभी सब कहते हैं 100 साल की तुम हो, मैं 100 साल से 1 साल और हो गया, कमाल से किया। ये दादी दादी के दिल से क्या निकलता है अभी आप सुनेंगे, पर मेरी दिल क्या बोलूं, मैं तो क्या बोलूं, बोल कुछ निकल नहीं सकते है। न्यारा रहना तभी प्रभु प्यार करता है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है। हम बाबा नहीं कहते, प्रभु की लीला कैसी सुंदर है, निमित बने हुए ऐसा सुंदर मेला बनाया है, मुझे रोज बुलाना, मैं आज बुला के काम नहीं उतार देना। अल्लाह से मुझे दादी कितना अच्छा मेला लगता है, ऐसे हमारे माताओं बहनों का, क्योंकि बाबा ने निमित बनाया है, तुम बनेगी, तेरे को देख और बनेगी, कोई मेहनत नहीं है, हम ऐसे हम बने, इसमें क्या पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ है, हम निमित बने। पुरुषार्थ है बाबा तो मेरा, मैं बाबा आपकी। बाबा ने कहा तो बच्ची मेरा ही है, और मैं कह रही बाबा तू मेरा है, आपने अपना बना के गले लगा के पहले अपना बनाया, यानी गोद उठाया पर गले लगाया। मैंने बाबा से साकार से पूछा, बाबा मैं माला में आएंगी ना, कहा तो बच्ची ये आएंगे तो क्यों नहीं, ये आप निमित्त बनी। अभी मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसी क्वालिटी का बनाया जो विश्व भर में हर एक आत्मा का दिल से यही निकलता है, क्योंकि मुझे बाबा कैसा है वो दुनिया में कोई भी आत्मा है, बेचारी दुख दूर करने वाले, सुख से संपन्न बनाने वाले बाबा को याद करें। तो आप सभी आज बाबा को याद करने वाले मन में नाभों का मंत्र का प्रैक्टिकल रूप, मंत्र मुख से जपा नहीं जाता है, तो मंत्र ऐसा है तो बाबा खुद कहता है मामे कम याद करो, मुझे एक को याद करो। हाँ बाबा समझ गए, हम एक को कई याद में रहेंगे तो एक आपस से मिल करके महात्माओं को एकता में रहना थोड़ा सहज नहीं लगता है। अभी बाबा ने हम सबको बड़ा ऐसा लायक बनाया है जो खुशी जैसी खुराक नहीं, वो चिंता जैसा मर्द नहीं। ऐसे है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, हम चिंता कभी नहीं करते। चिंता न करने से व्यर्थ चिंतन भी नहीं होता, तो इसमें खुश नसीब है जो चिंता से मुक्त है, हर्षित मुख है। ठीक है दादी, ठीक है ना। अभी दादी मेरी पास बैठी है, हम जब सारे दिन में दादी का मुखरा नहीं देखती हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे होता है, तो कोई तरीके से दादी का मुखरा देख लेते हैं। क्यों ये जो लेके आए हैं,
आज के उद्घाटन सत्र का हम विधिवत दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन करेंगे। हमारी आदरणीय दादियां और श्रीमती अनीता बघेल जी और अन्य सभी मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय महानुभाव सम्मुख आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में। जग उजियारा,
सभी सेशन के स्पीकर भाई बहने
सुख
ही, जो अलग अलग सत्रों में वक्तव्य देने वाले हैं, उन सभी के लिए भी दीप प्रज्वलन के लिए दोनों साइड में स्टैंड रखे गए हैं। आप कृपया सभी मंच पर आएं और आप भी दीप प्रज्वलन में सहयोग दें। सभी सत्रों में भाषण देने वाले, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले हमारे स्पीकर मेहमान भाई बहने एवं बीके भाई बहने, आप भी मंच पर आएंगे और जो साइड में स्टैंड रखे हैं वहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे।
ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
जन मिल जाए, प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्ण युग ले आए, स्वर्ण युग ले आए।
नेंगे भाई जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन में उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो सब आपके निर्देशन में संपन्न होते हैं, ऐसे अपने अनेक परिसरों का आपने निर्माण करवाया है। आपको मुंबई से ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, आप पहले इंडियन नेवी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और उसके पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के आपने अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आपका ये परम सौभाग्य रहा कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आगे बढ़े। उनके अव्यक्त होने के पश्चात आप मुख्यालय में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्मेलन के लिए अपनी प्रेरणाएं हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राधा निर्वैर जी। कृपया सभी शांति बनाए रखें, सम्मेलन अभी जारी है।
ओम शांति। परमादरणीय विश्व पिता, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों और हमारी महिला प्रभाग की चेयरपर्सन बहन चक्रधारी जी तथा अन्य जो भी वक्ताएं अपना प्रवचन करके गए या जिन्होंने करना है, और आप सब बहनें और भाई, थोड़े से भाई हैं, बहनें हैं सभी, क्योंकि ये महिला सम्मेलन है तो महिलाओं के सम्मेलन में मुझे आने का बड़ा गौरव है। बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख करके। ये मेरा सौभाग्य रहा लगभग 58 साल से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश किया और तब से लेकर के बड़ी दादियों का मार्गदर्शन, मातेश्वरी सरस्वती जी का विशेष मार्गदर्शन कहूं, उनकी कृपा कहूं, उनकी प्रेरणा के फल स्वरूप आज मैं यहां बैठा हुआ हूं। और साथ ही साथ यूं कहूंगा कि जिसने वो दृश्य देखा, साक्षात्कार किया पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने, कि संसार के अंदर जो इतनी कुरीतियां हैं, जो इतनी दुख अशांति फैल रही है, इसको दूर करने के लिए भिन्न भिन्न संत महात्माओं ने तो बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन जब तक मातृशक्ति इसमें स्वयं कुछ नहीं करती तो ये संसार सुखमय संसार नहीं बन सकता है। और इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो यूं कहें कि शुरुआत हुई है उसमें निमित्त ब्रह्मा बाबा जिनका पहले नाम दादा लेखराज था उन्होंने जिस तरह का एक संकल्प लिया, कहा जाता है आप एक व्यक्ति को परिवर्तित करते हो तो वो एक को करते हो, एक महिला परिवर्तित हो जाए तो सारे समाज को करते हो, सारे संसार को करते हो। उस बात को सामने रखते हुए ब्रह्मा बाबा ने जब ये शुरुआत की इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की आज से 80 साल पहले, तो उन्होंने 3 माताओं और 5 कुमारियों के जिम्मे सारा ट्रस्ट अपना बना करके दे दिया उनको, खुद उसमें नहीं रहे लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी सारी 3 माताओं के हवाले और उनके साथ में 5 कुमारियां, और उन 5 कुमारियों में सबसे श्रेष्ठ जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, गुणों के अनुसार कह लो, ईश्वरी विद्या के गहन अध्ययन के अनुसार कह लो, वो थी मातेश्वरी सरस्वती। सरस्वती का नाम सब जानते हैं, हर स्कूल के अंदर हर कॉलेज के अंदर सरस्वती का पूजन होता है, तो सरस्वती माता कुमारी थी लेकिन उनके अंदर वो दिव्यता थी, वो पवित्रता थी और वो दिव्य गुण थे जिसके कारण उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी नंबर 1 थी। और आप सोचिए दुनिया के अंदर ये कहावत है कि 2 महिलाएं भी इकट्ठी नहीं रह सकती आपस में, आप सोचिए 380 भाई बहने उनमें ज्यादातर महिलाएं वो 14 साल तक इकट्ठे तपस्या करते रहे, ये किसकी शक्ति थी? उस पिता परमात्मा की शक्ति और उनके साथ में उनकी दी हुई जो श्रीमत श्रेष्ठ मत उसके अनुसार जो निमित्त मातेश्वरी सरस्वती और उनके साथ में दूसरी बहनें और माताएं जो बनी उन्होंने इतना अच्छी तरह से उसको संभाला, तपस्या की और साथ साथ ज्ञान की गहराई में गए और एक ऐसा उच्च लक्ष्य परमात्मा पिता ने उनको दिया कि आपको एक एक व्यक्ति को परिवर्तन करके सारे विश्व का परिवर्तन करना है। और उसके लिए आप सोचेंगे कि 80 साल से ये कार्य चल रहा है अभी तक क्या परिवर्तन हुआ है, तो वो बहनों ने सुनाया आपको, आज 140 देशों तक ईश्वरी संदेश पहुंच चुका है और भारत के भी कोने कोने में ये संदेश पहुंच चुका है। और संदेश बहुत सहज सा दिया, आप चाहते हैं हम सुखी रहें, आप चाहते हैं हम शांति का अनुभव करें, आप चाहते हैं आपस में प्रेम से रहें, तो उसका एक ही सहज साधन है आत्म स्वरूप की स्मृति में रहें, दूसरों को भी आत्मा रूप से देखें और परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं और जब शरीर में है तो आत्मा रूप से जीवात्मा के रूप में भाई और बहन हैं। इस नाते से जब हम एक दो के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देंगे तो सहज ही उस स्नेह का वातावरण बन जाएगा, पवित्रता ऑटोमेटिकली इस जीवन में आ जाएगी और साथ में अन्य को भी अपने इस ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराने का एक लक्ष्य रहेगा। और इसमें खास बात है कि माताओं के अंदर वो बातें हैं जो हमने पहले चक्रधारी बहन से भी सुनी कि ऐसे गुण हैं जो जिसके फलस्वरूप सबको एक भी कर सकती हैं, गीत भी ऐसे बने हुए हैं, लेकिन एक करके करना क्या है? जब तक कोई ऊंचा लक्ष्य ही नहीं है तो एक करके भी क्या करेंगे? अगर ये लक्ष्य सामने आ जाए कि हम इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाएंगे, फिर से सतयुगी संसार बनाएंगे, फिर से इसको श्री कृष्णपुरी बनाएंगे, फिर से यहाँ पर वही श्री कृष्ण की लीला होगी, ऐसा सतयुगी संसार बनाने के लिए माताओं को अगर भगवान ने निमित्त बनाया तो माताओं को कितना गर्व होना चाहिए अपने जीवन में। और उसमें हिस्सा लेना कोई उसके लिए दूसरी कोई बात नहीं है, दिल से उस पिता परमात्मा के साथ अपना मन जोड़ना, उनसे शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि इस समय नारी सिर्फ नारी नहीं है, परमात्मा ने अपना सर्वशक्तिवान का संग दे करके हर एक नारी को शक्ति बना दिया है। तो आज ये सभा जो है ये ऑर्डिनरी नारियों की नहीं है, ये शक्ति सेना की सभा है यहाँ। और ये शक्ति सेना विशेष कार्य क्या करेगी? सारे विश्व से पांच विकारों का खात्मा करवाने के लिए हरेक का ज्ञान का दीपक जलाएगी, हरेक के मन में भावना लाएगी कि मुझे परमात्मा के साथ मन लगा करके श्रेष्ठ जीवन बनानी है, उत्तम जीवन बनानी है, और मनुष्य से देवता बनने के लिए, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए, नर से श्री नारायण बनने के लिए फिर से अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बनाना है, ऐसे संस्कार बनाने हैं। और जैसे संस्कार होंगे वैसा ही भविष्य जन्म होगा, वैसा ही भविष्य संसार होगा। तो नए संसार के लिए, जिसको हम कहें स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, हम अपने दिल के अंदर एक अच्छी तरह से स्वयं से पक्का वायदा कर लें कि हम अपना जीवन इतना अच्छा बनाएंगे, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे और इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व में शांति लाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रेरणाएं आपने हम सबको दी हैं और अवश्य हम सब आपकी आशाओं को पूरा करेंगे। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारी माननीय मंत्री जी जो जयपुर से पधारी हैं और राजस्थान सरकार में आप महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, आप 1999 से राजनीति में सक्रिय हैं, आप 2003 से 2013 तक सदस्य रहे 12वीं व 13वीं विधानसभा में, और 2003 से 2008 तक प्रदेश मंत्री रहे महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी में, 2014 प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में रहे, ऐसे अन्य अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में आपने कार्य किया है, सेवा भारती की प्रकल्प प्रमुख के रूप में 12 वर्ष कार्य किया है। और मैं आपके लिए कहूंगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और हमें आपके अनुभवी वचन सुनने को मिले तो और क्या चाहिए। श्रीमती अनीता बदिल,
सबसे पहले तो मैं शिव बाबा के चरणों में वंदन करते हुए आज इस पवित्र
नगरी में मुझे सौभाग्य मिला है आप सबके बीच में उपस्थित होने का। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, और विषय भी ऐसा कि विश्व के परिवर्तन में नारी की क्या भूमिका है। अभी हमने दादी जानकी जी को आशीर्वाद उनका हमें मिला है, उनके प्रवचन सुनने का अवसर हमें मिला है। दादी हृदय मोहिनी जी का भी आशीर्वाद, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद हमें दोनों दादियों का एक साथ मिला है। यहाँ हमारी जो महिला विभाग की निदेशिका है माननीय चक्रधारी दीदी जी, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से इन सब विषयों के बारे में ज्ञान दिया है। भाई निर्वाणी जी और हमारी पूनम दीदी जिन्होंने इस पूरे सत्र की शुरुआत की है, हमारी मध्य प्रदेश से आई हुई दीदी जिनको भी हमने सुना है, ऐसे सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे अजमेर के उप महापौर संपत सांकला जी, और इस पूरी कार्यशाला को जिनका मधुर वाणी से इतने सुंदर शब्दों के साथ में जिन्होंने संचालन का जिनको दायित्व मिला है, ऐसी हमारी दीदी सविता जी। यहाँ इस सभागार में मौजूद पूरे देश भर से आई हुई मेरी बहनें, जिन्हें 3 दिन तक इस कार्यशाला में भाग लेना है और इन विषयों पर मंथन करना है कि नारी की इस विश्व के परिवर्तन में क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि इस संगठन पूरे विश्व स्तर पर काम करता है, एक बहुत ही अद्भुत शक्ति हमें देखने को मिलती है कि महिलाओं द्वारा पूरे विश्व में विचार क्रांति के रूप में परिवर्तन कैसे करके हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, महिलाएं कैसे शुरू कर सकती हैं। अभी जो सिरोही की एडिशनल एसपी थी, उन्होंने अपनी बात शुरू की और बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभवों को उन्होंने आप सबसे शेयर किया। हम आध्यात्मिक रूप में गृहस्थ में रहते हुए महिलाएं कैसे उस गृहस्थ को आश्रम बना सकती हैं, कैसे उस घर को मंदिर बना सकती हैं, और संतोष प्राप्त करके जो कुछ उसके पास है उसमें सुखमय जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है। दो बहुत सुंदर सुंदर नृत्य नाटिकाएं भी यहाँ प्रस्तुत की गई, और जब दूसरी नृत्य नाटिका यहाँ प्रस्तुत हुई, भारत की यह कहानी है ज्ञान की यह गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। इतनी प्रचुर संस्कृति, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस संस्कृति में जन्म लिए हैं, जहां नारी को बहुत उच्च स्थान मिला है, लेकिन जिसकी संस्कृति इतनी विपुल थी, इतना संपन्नता उस संस्कृति में थी, आज की परिस्थितियां क्या कहती हैं? आज क्या हमारे सामने वही परिस्थितियां हैं या बदल गई हैं? क्या नारी के पास जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान उसके पास अभी भी है? क्या उसको जीवन का जो अधिकार था वो उसका जीवन का अधिकार अभी वर्तमान में भी है? उसे जो पोषण का और शिक्षा का अधिकार था वो पोषण और शिक्षा का अधिकार क्या आज है क्या? यदि हम इन विषयों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो बहुत सारी चीजें जो इतिहास में नारी को सहज उपलब्ध थी, वो धीरे 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 कहीं कहीं हमने खो दी है, हमसे कहीं कहीं छिन गई है। तो वापस उस समाज की कैसे रचना की जाए, वापस उस समाज में उन परिस्थितियों को कैसे वापस विद्यमान किया जाए और वर्तमान की परिस्थितियों में कैसे बदलाव लाया जाए,
हम सब सुनते आए हैं कि शिक्षा एकमात्र साधन है जिससे इन सब परिस्थितियों को बहुत शीघ्रता से बदला जा सकता है। पर शिक्षा कौन सी और कैसी? क्या अक्षर ज्ञान को शिक्षा कहते हैं? क्या नहीं, अक्षर ज्ञान मात्र शिक्षा नहीं हो सकता। हमने वर्तमान में सिर्फ कोशिश की है शिक्षा के नाम पर अक्षर ज्ञान को परोसने की, उसमें संस्कार कहीं छिन गए हैं। जब संस्कार किसी समाज से छिन जाते हैं तो समाज इतनी सारी विपत्तियों से घिर जाता है जिसके लिए एक बहुत बड़े विचार परिवर्तन की आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। आज हम जब देखते हैं तो लिंग भ्रूण की हत्या, कन्या लिंग भ्रूण की हत्या किस कदर किस पैमाने पर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी बताया गया कि सिरोही जिले में शिक्षा, बेटियों की शिक्षा बहुत कम है। परिवार की जिम्मेदारी एक महिला पर है। जब परिवार में संस्कार नहीं होते हैं तो फिर शराब और व्याभिचार का प्रचलन बढ़ता है, और जब शराब और व्याभिचार का प्रचलन बढ़ता है तो संस्कार तो उस परिवार में हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में नारी क्या करे और कैसे करे कि संपूर्ण परिवर्तन ला करके खड़ा करे क्या? तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि नारी को खुद को समझने की, खुद को जानने की। जब वो खुद को समझेगी, खुद को जानेगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन उस दिन से शुरू हो जाएगा। नारी जो कि बहुत बड़ी शक्ति है, और ये भी कहा गया है कि असुरों का संहार करने के लिए परमात्मा को भी नारी की ही आवश्यकता पड़ी थी, तो आज भी वही नारी है, पर उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसकी शक्तियों का, उसकी क्षमता का कैसे हम उपयोग करें। नारी चूंकि जन्म देती है, सृजन की शक्ति नारी को ही दी है ईश्वर ने। नारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनाई है ईश्वर ने और उसी को सृजन की शक्ति दी है, इसलिए मैं अनेकों बार ये बात कहती हूँ कि नारी सिर्फ लिंग भेद के आधार पर नहीं पहचानी जा सकती। ये लिंगवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। जिस काया में, जिस शरीर में, जिस मानव देह में ममता, करुणा, त्याग, तपस्या और सहनशीलता के गुण है, वो देह है नारी। इसलिए इस नारी की क्षमताओं को कम करके आंकना समाज की बहुत बड़ी भूल है। आधी आबादी, इस विश्व की आधी आबादी, इस देश की आधी आबादी को यदि पंगु बना करके रखा जाएगा तो वो समाज, उस देश का समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इतिहास में हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे उदाहरण। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब महापुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री, किसी न किसी नारी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्त्री माँ की भूमिका में रहती है। माँ के रूप में उसके क्या कर्तव्य हैं? जरूरी नहीं है कि ये शिक्षित नारी के ही जानकारी में हो। एक अशिक्षित नारी भी बहुत अच्छे से जानती है कि माँ के रूप में उसके क्या कर्तव्य हैं। बच्चे को ठीक प्रकार के संस्कार अपने माध्यम से उस आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करना, ये माँ का पहला दायित्व है। लेकिन हम कहीं भूल बैठे हैं उन संस्कारों को ट्रांसफर करने में, और उसी के कारण से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है इतिहास का, उदाहरण नहीं बता रही हूँ, बहुत सच्ची घटना है हिंदुस्तान के इतिहास की, वो मैं आपको बता करके नारी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है इसकी ओर संकेत करना चाहूंगी। हमने नाम सुना है विवेकानंद जी का, जो बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने परिवर्तन के एक युग पुरुष के रूप में हिंदुस्तान की स्थापना की है। उनके बचपन की घटना है। बचपन में जब वो अपने गली और कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते उस समय टीवी नहीं थे, उस समय कोई ऑडियो वीडियो नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थे, तो बच्चे अपने कॉलोनी के बच्चों के साथ ही खेला करते थे। और जब वो खेल रहे थे तो खेलते खेलते आपस में कुछ कुछ बड़े होकर के क्या बनना है। एक बच्चे ने कहा मैं तो बड़े होकर के डॉक्टर बनूंगा, दूसरे बच्चे ने कहा मैं तो बड़ा होकर के इंजीनियर बनूंगा, तीसरे बच्चे ने कहा मैं तो बड़ा होकर के बहुत बड़ा बैरिस्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान की गुलामी का समय था और उस समय अंग्रेजों का शासन था और वकील बनना एक बहुत बड़ा व्यवसाय, एक बहुत बड़ा काम समझा जाता था। तो किसी बच्चे ने कहा मैं तो बड़ा होकर के वकील बनूंगा। एक छोटा सा बालक था जो सबसे छोटा था उन सब बच्चों की उम्र के बच्चों में, उस सबसे छोटे बालक ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं बनना, मुझे तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना है। तो जो बच्चे खेल रहे थे उसी बच्चे की माँ जिसने ये बात कही कि मैं तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनूंगा, उस बच्चे की माँ ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। और जब उसने ये सुना कि मेरा बालक है ये जो ये कह रहा है कि मैं तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनूंगा, तो उसके मन में, उसके मन के कोने में बहुत दुख हुआ और दुखी हो गई वो। और दुखी होकर उसने कहा कि क्या मेरा बालक सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनेगा, क्योंकि घोड़ा गाड़ी उस समय चला करती थी, अंग्रेज उसमें जाया करते थे और बहुत सुंदर रथ से जुटी हुई गाड़ी होती थी। तो बच्चे को जो वातावरण में दिखता है वही उसे आकर्षित करता है। तो इस नाते से उस बच्चों ने अनायास ही ये बात कह दी, लेकिन माँ ने तय किया। माँ उस बच्चे को अपने हाथ से खींच करके अपने मकान के ड्राइंग रूम में लेके गई और वहां ले जाकर के उसने एक चित्र दिखाया। उस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुझे घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनना है तो निश्चित रूप से मैं तुझे कोचवान ही बनाऊंगी, पर कोचवान कैसा बनना है। उस चित्र पर जो इशारा किया था वो चित्र था महाभारत के युद्ध का चित्र, और उस चित्र में कृष्ण अर्जुन का रथ खींच रहे थे, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। और उस माँ ने कहा तुझे यदि सारथी बनना है तो ये कृष्ण जैसा सारथी बनना है। और उस माँ ने जो तय किया, जो बचपन में उसके लिए सोचा, बड़ा होकर के वो नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद जी बने। तो ये है माँ की भूमिका, ये है माँ का दायित्व। उस समय में किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, उस समय तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, गुलामी में हमारा देश जी रहा था और ऐसी गुलामी की दास्ता के समय भी उस माँ के संस्कार किस तरह से उस बच्चे को बना देते हैं, उस बच्चे की दिशा को तय कर देते हैं। अभी अभी हमने एक नाटिका देखी थी, उसमें जीजा माता अपने शिवाजी को दूर से इशारा करते हुए कुछ संकेत दे रही थी। आज यदि शिवाजी का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है तो वो शिवाजी के कारण से नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है उसकी माता जीजाबाई का मातृत्व भाव। माँ के भाव को जिंदा रखना और माँ कैसी होती है ये सिद्ध किया है जीजा माता ने कि माँ चाहे तो अपने बालक को कैसी दिशा दे सकती है, किस प्रकार से तैयार कर सकती है स्वराज्य की स्थापना, अत्याचार मुक्त प्रशासक कैसे दिया जा सकता है, वो शिवाजी को बनाने के पीछे जीजा माता की भूमिका। हम आप सब राजस्थान में आए हैं, राजस्थान के इस सिरोही जिले के इस माउंट आबू क्षेत्र में है। राजस्थान की एक दो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, कई बहनें जानती होंगी, कई लोगों को इसका परिचय नहीं है। मेवाड़, जब मुगल शासन यहाँ था और मेवाड़ की राजगद्दी पर जब खतरा मंडराया तो उस राजघराने में काम करने वाली मात्र एक धाय माँ ने अपने बच्चे की आहुति देकर के अपने बालक को, जो एकमात्र उसका बालक था, उसको मरण शैया पर लिटा करके उस राज्य की राजगद्दी की चिंता करी तो किस प्रकार से कर्तव्य परायणता का संस्कार लेकर के जब माँ अपने बच्चे को ट्रांसफर करती है तो फिर हम ये जो परिवर्तन चाहते हैं वो अनायास ही बिना किसी बहुत बड़े कार्य के बिना किसी बहुत बड़े संसाधन के हर परिवार में हम कर सकते हैं। और वो बहुत बड़ा उदाहरण था पन्ना धाय का, वो पन्ना धाय जिसने राज परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की पालना के लिए अपने बच्चे को अपने बालक को मृत्यु शैया पर लिटाया था। एक और बहुत बड़ा उदाहरण है जब मुगल शासन मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आए और बूंदी की रानी हाडा ने अपने पति के मोह के कारण से, क्योंकि उनका विवाह कुछ समय पूर्व ही हुआ था और पति को जाना था लड़ाई पर, लेकिन पति पत्नी के मोह में पड़कर लड़ाई पर नहीं जाना चाहते थे और बार बार अपनी रानी से निशानी मांग रहे थे कि मुझे कुछ निशानी दे दो। तो उस रानी ने, जो हाड़ा रानी थी, अपना शीश काट करके दे दिया कि आपका कर्तव्य मेरे रूप मोह में फंसने का नहीं है, अभी आपका कर्तव्य है युद्ध भूमि में जाकर के शत्रु का विनाश करने का। तो इतने बड़े बड़े उदाहरण, पद्मिनी का उदाहरण है जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया था। ये आज की आवश्यकता है हम कि हम ये सब इतिहास के पन्नों को पलटकर वापस स्मरण दिलाएं हमारी महिलाओं को, और स्मरण दिला करके वापस उन गुणों, हमारी दीदी ने, जो पूनम दीदी ने कहा, हम सबको याद रखने की आवश्यकता है कि नारियोचित गुण कभी भी नारी को नहीं भूलने चाहिए। यदि वो ये नारियोचित गुण भूल गई तो इसका मतलब है कि प्रकृति से उसने अपनी लड़ाई प्रारंभ कर दी है। ये प्रकृति ने हमें दिए हैं और प्रकृति ने जो चीज हमें दी है उसको सहेज कर रखना, उसको संवार कर रखना, उसमें वृद्धि करना हमारा दायित्व है, ना कि उनको तोड़ मरोड़ना, उनको खत्म करना। यदि हम ऐसी विकास की राह चाहेंगे जब नारीचित गुणों को हम भूल बैठेंगे तो वो हमारे लिए विकास नहीं विध्वंस की राह है, और इस विध्वंस की राह पर बच करके ही हम हमारे समाज को उन्नत बना सकते हैं। संतोष संतुष्टि ये कहाँ से आएगी? ये संतुष्टि आएगी हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाकर के, जब हम अपने आप को उन सब अनुभूतियों से अनुभूति कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें बार बार स्मरण आता है। और हम हमारी कार्य क्षेत्र में जाकर के, अभी हम यहाँ सब 2 दिन की इस कार्यशाला में आए हैं, लेकिन यहाँ से जो कुछ भी लेकर के जाएं, चाहे हम आध्यात्मिकता लेकर के जाएं, चाहे हम कुछ प्रेरणादायी वचन लेकर के जाएं, उनका अनुसरण हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के यदि करते हैं तो मैं समझती हूँ आज इस पंडाल में जितनी नारी शक्ति यहाँ बैठी है, यदि वो नारी शक्ति तय कर ले कि नहीं हमें करके ही दिखाना है, हम एक से ही शुरू करें, हम बहुत बड़े स्तर पर शुरू ना करें, हम हमारे परिवार से यदि शुरू करते हैं, हमारे बच्चों से शुरू करते हैं, हमारी पीढ़ी से शुरू करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम उस परिवर्तन को प्राप्त कर पाएंगे जिस परिवर्तन के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम तैयारी करें अपने संस्कारों के साथ नई पीढ़ी को गढ़ने की, हम तैयारी करें उन सब संस्कारों को ग्रहण करने की जो आज की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण, नारी चरित्र का शील है और चरित्रवान नारी समाज को बहुत बड़ी दिशा दे सकती है। ये किसी दूसरे से नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये अपने संस्कार से, अपने परिवार से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। अभी हम सब लोग जिन चीज से बहुत बड़े परेशान हैं, मैं 2 चीजें और कहकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की। अभी ईमानदारी की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरे मन में एक प्रश्न बहुत बार बार उठता है और वो ये प्रश्न है, नगर पालिका का एक ईओ, बहुत छोटा सा ईओ, ट्रैफिक का एक सिपाही जो खड़ा है चौराहे पर, एक आरटीओ ऑफिस का कर्मचारी जो गाड़ी का नंबर देने का रजिस्ट्रेशन करता है, ये सब कर्मचारी, पुलिस का एक कांस्टेबल जो एफआईआर दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार की रिश्वत मांगता है, ये सब आते कहां से हैं? ये किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब महिलाओं के बीच में बैठती हूँ और उनसे बात करती हूँ, तब नारी यदि ये तय कर ले कि मेरे बेटे की कमाई की अतिरिक्त यदि वो एक भी पैसा घर में लेकर के आता है तो वो पाप की कमाई है और उसको मैं अपने घर पर खर्च नहीं करने दूंगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन समाज अपने आप ही हो जाएगा। पर जब नारी नहीं पूछती है ना, स्त्री नहीं पूछती है, एक पत्नी नहीं पूछती है कि ये 10,000 रुपए आप कहाँ से लाए, आपकी एक तारीख को जो तनख्वाह मिली थी वो तो आपने 2 तारीख को, 1 तारीख को शाम को ही मुझे दे दी थी, ये 10,000-20,000 रुपए आए कहाँ से है, जब वो ये प्रश्न पूछने लग जाएगी ना, तब उसके बेटे को, उसकी पति को भी शर्म आएगी कि नहीं, मेरी पत्नी घर में इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करने वाली है। तब हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी ईमानदार हो सकते हैं, उनके मंत्रिमंडल के कुछ लोग ईमानदार हो सकते हैं, पर जब तक पूरा समाज, पूरे समाज में रहने वाली जो इकाई परिवार है वो खुद ईमानदार नहीं हो, एक नरेंद्र मोदी जी आबू रोड के इस शहर के चौराहे पर खड़े कांस्टेबल को सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन संस्कार तो उसके घर से, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन से ही मिलने वाले हैं। जब तक रोक वहाँ नहीं होगी तब तक हम इस भ्रष्टाचार मुक्त शासन को नहीं दे सकते। इसलिए पुनः पुनः आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, बहुत सारी सरकारें बहुत सारा महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम हो, परंतु आप देखिएगा कितने आश्चर्य की बात है, जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं वैसे वैसे महिला अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका तो एक अर्थ सीधा सीधा है कि जो व्यक्ति शिक्षित हुआ है वो ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। जैसे जैसे हम शिक्षित हुए हैं वैसे वैसे कन्या भ्रूण हत्या के मामले ज्यादा आए हैं। आदिवासी अंचलों में कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है, वो संतान को ईश्वर की देन मान करके स्वीकार करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, बेटा ही चाहिए, हमें तो बेटी नहीं चाहिए, इसलिए गर्भ में आने पर भ्रूण लड़का है या लड़की उसकी जांच करा करके उस कन्या को वहीं पेट में ही खत्म कर देते हैं, उसको जीने का अधिकार ही नहीं देते। तो शिक्षा हमें प्रगति की ओर ले जा रही है या विध्वंस की ओर ले जा रही है? इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा में भी शिक्षा कैसी है, वो संस्कारवान है, वो चरित्र निर्माण का काम करती है, या वो सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने का एक बहुत ठोस कारगर साधन है, तभी हमारी शिक्षा हमारे लिए विकास के, प्रगति के पथ खोलने वाली है। उन्हें आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनीता बधेल जी, बहुत ही ओजस्वी वाणी में आपने अपनी बात हम सबके सामने रखी और विशेष रूप से संस्कारों को परिष्कृत करने पर आपने जोर दिया कि माँ ही बच्चे को संस्कार देती हैं और आप यदि उन्हें सही संस्कार देते हैं तो भारत को हम श्रेष्ठ और ईमानदार नागरिक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सत्र के समापन की ओर हैं। आप सबके लिए एक सूचना है, शाम को 5 बजे यहीं डायमंड हॉल में पैनल सत्र होने वाला है और वो पैनल सत्र बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर भी आप उसमें कर सकते हैं और हमारे बहुत प्रबुद्ध वक्ता हैं उस पैनल सेशन में। आप सभी समय पर यहाँ डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। समापन से पूर्व मैं 2 मिनट के लिए अनुरोध करूंगी श्री संपत सांकला जी से। आप अजमेर नगर के उप महापौर हैं, वो अपने भाव हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
बोलने के मंच से आदेश की पालना करते हुए विश्व परिवर्तन नारी की भूमिका के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर पधारे मंचस्थ समस्त अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं यहाँ से जो मातृत्व का जो प्रेरणादायी हम सबको यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, मेरे ख्याल से हम सभी लोग अपने जीवन में इसको अवतरित करने का प्रयास करेंगे तभी यह सार्थकता इस सम्मेलन के माध्यम से होगी। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया उसका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
और अभी हम 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठेंगे और उसके पश्चात आप प्रस्थान कर सकते हैं।
घर में खुशहाली